ओम शांति। अभी अभी लग रहा था कि हम क्लास में नहीं बैठे हैं, लेकिन एक राज दरबार में बैठे हैं, शहजादी से शहजादियों के साथ। इतनी अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी रॉयल्टी और रियल्टी की। तो जब ही प्रवीणा बहन ने निमंत्रण दिया था क्लास कराने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी आ रही थी कि ऐसी भट्टियां चलती है मधुबन में, और आप सभी स्व परिवर्तन में सहयोगी बनते हो, उसका भी एक वायुमंडल बनता है। और मधुबन शांतिवन तो मधुबन का टुकड़ा ही है, ये यज्ञ का हार्ट है। और जब हार्ट हेल्थी होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कहा जाता है ना इंग्लिश में, हेल्थ इज सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी। मैंने दादी जी में बहुत देखा था। चलो दादी जो भी बीमारी आती थी, लेकिन दादी की एनर्जी की सर्कुलेशन बहुत थी। शी कुड मूव एनर्जी वेरी फास्ट। तो यहां पे जब भी हम ऐसे भट्टी करते हैं, खुद को टाइम देते हैं, तो हम विश्व सेवा में सहयोगी बनते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातों की रिवीजन हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट बन के रहना। जो भी टॉपिक मिलती है उसको दोबारा रिवाइज करें खुद के लिए, प्रैक्टिकल में भी देखें कितना तक धारण हुआ है। तो आज टॉपिक जो दी है, सम्मान एवं सहयोग। और दोनों बातों का एक ही आधार है, वो है प्यार। दिल का प्यार नहीं होता है तभी दिल से सम्मान भी नहीं दे सकते हैं। दिल का प्यार नहीं होता है तो सहयोगी भी नहीं बन सकते। तो सहयोगी, जब ये रियल सहयोगी बनते हैं तो सहज योगी भी बन जाते हैं। बहुत बारी विदेश में हमने ये देखा है, कई लोग आते हैं, चलो जल्दी योग नहीं लगता है, तो उनको कई कार्य में उनकी जो सहयोग देने की विशेषता होती है, धीरे धीरे वही विशेषता उनको योगी बना देती है। तो मैं समझती हूं ब्राह्मण जीवन का ये एक ही ऑक्यूपेशन है, ये एक ड्यूटी नहीं मिली है, ये हमारा धर्म है सहयोग देना, इसलिए तो हम ब्राह्मण बने हैं ना। तो आज मैंने बैठ करके एक लिस्ट निकाली कि किस किस बातों में मुझे सहयोग से शुरू करना है, क्योंकि सम्मान और स्वमान का टॉपिक फिर बाद में इसके साथ संबंधित है। लेकिन कौन सी बातें में सहयोग देना है। कभी कभी हम समझते हैं कि सहयोग मोटे रूप से कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, कुछ दिया, किसी को थोड़ा ऊपर ऊपर से खुश किया, इसको सहयोग नहीं कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं पीपल प्लीजिंग, शब्द आता है किसी को प्लीज करना, माना ऊपर से खुश करना, लेकिन मन से तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की वाणी इतनी अच्छी थी बाबा ने बताया था ना कि किसी को खुश करने की सेवा में दोनों चीजें चाहिए, मन और मुख। तो अंदर की भावना, शुभ भावना प्रकट करके जब हम सहयोगी बनते हैं तो सचमुच औरों को हम खुश कर सकते हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर किसी को खुश करेंगे तो उसकी कमजोरी को हम फीड करते हैं, उसकी कमजोरी को खिलाते हैं, फिर और ही हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि एक अकाउंट खुला, ऊपर ऊपर से देने का अकाउंट खुला, फिर अंदर से एक प्रकार की मजबूरी बनती है। चलो इसने किया है ना तो मुझे भी करना चाहिए ना। ये जो सूक्ष्म डिपेंडेंसी पैदा होती है वो फिर सम्मान, हमारा सम्मान देने का भी कट होता है, स्वमान में रहने का भी कट होता है। और इतने सालों तक दादी को जो हमने देखा है, दादी ने कभी भी किसी को खुश करने के लिए मान नहीं दिया है, पहचान से दिया है। जैसे कोई मां होती है अपनी बच्चों की विशेषता को जानती है, कमजोरी भी जानती है लेकिन विशेषता को भी जानती है, और उसको सामने रख करके रियल गुड विशेस, रियल मान देना, इसको कहेंगे रॉयल्टी। और इसमें हम संबंध में फंसेंगे नहीं। तो कई बारी जब भी हम विदेश में लेक्चर करते हैं तो कई लोग भूलते हैं कि चलो हम बहुत, हमारे परिवार में हम किसी को खुश करने का बहुत इसको सहयोग देते, बहुत कुछ, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं हमको। कितना हमने कुछ किया अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो फिर हम जवाब देते हैं, आप थोड़ा बीज देखो, आप सिर्फ मुख से खुश करते हो या सचमुच मन और मुख से अंदर गुड विशेस है इस व्यक्ति के लिए, या डर के मारे आप इसको खुश कर रहे हो, या आप कुछ चाहते हो उससे, कुछ मान की सूक्ष्म इच्छा है इसलिए खुश कर रहे हो उसको। तो इंटेंशन को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे ही अकाउंट बनता है। और आगे वाली जो हमारी राजधानी हम अभी बना रहे हैं, और हमारे धारणा और कर्मों द्वारा हम ऊपर ऊपर से मान देंगे, ऊपर ऊपर से किसी को खुश कर देंगे, ऊपर ऊपर से सहयोग देंगे, तो हमारी राजधानी में भी ऐसे होगा, पाए पैसे की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हमारी आगे की राजधानी हमारी धारणा से बनती है। तो हमने ये दादी जी से बहुत ऑब्जर्व करके देखा है कि खुद का पद का ख्याल करना है और आगे की मेरी राजधानी के लिए मेरा पूरा चक्र। तो आज जब भी मैं बैठी थी तो सहयोग देना, उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा किस किस बातों में हम सहयोग देवे, रियल सहयोग क्या है। तो एक तो चलो हम तन से तो सहयोग देते हैं, जो भी कुछ कार्य उठाना है करना है वो तो हम सहयोग देते हैं, लेकिन जो तन से नहीं दे सकता है तो मन और धन से तो दे सकता है ना। तीन चीजें आती है सहयोग देने में। और इसमें भी जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, कनेक्शन, किसी के साथ कनेक्शन रखना वो भी एक सहयोग होता है। नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं चलो छोड़ दो, क्यों बातें करें, लेकिन बाबा तो कभी हमारे साथ ऐसे तो नहीं करता है ना। हम जितना भी बच्चे नटखट हो, जितना भी बच्चे प्रॉमिस बनकर के वो टूट जाए, बाबा कभी ऐसे नहीं करता है चलो इसके साथ कनेक्शन छोड़ दो। तो अंदर से एक भावना होनी चाहिए कि कनेक्शन रखना है, एक संबंध रखना है, एक भावना होती है। चलो भल आप बाहर से मुख से आप किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करो, नो प्रॉब्लम, संभव कौन, संबंध किस आधार से बनती है, किसी की विशेषता को देख के भावना होती है ना, शुभ भावना रखते किसी के प्रति, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है सभी के साथ कनेक्शन में रहना। क्योंकि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हम समझते हैं हम अकेले पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आपको पता है कि संगठित रूप में आपकी पुरुषार्थ इतनी मजबूत होंगी जितना कम पुरुषार्थ वाला होगा संगठन में। इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं हम तीखे जाएंगे आगे चले जाएंगे, लेकिन हम सभी इंटरकनेक्टेड है। और जो हमारे संगठन में किसी में वीकनेस है तो वो वीकनेस हमारी बन जाती है। तो संगठन को मजबूत करना भी एक सहयोग होता है, उसके लिए बहुत अलग अलग धारणाएं होती है। कभी कभी चलो विदेश में तो आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जो भी मन में आया सीधा बोलते हैं। मुझे तो भारत में आकर के सम्मान देने की भावना जो है भारत में, आपको विश्व भर में ऐसी भावना नहीं मिलेंगी, है ना। कहान कहावत भी है ना, अतिथि देवो भव, भारत में ही ऐसा है। अपना खाना छोड़ करके गेस्ट को देंगे, इसलिए तो ब्रिटिश ने राज किया। जो छोटे छोटे पोजीशन वाले लंदन में जो थे वो यहां आकर के जैसे राजा माफिक जिए, लेकिन यहां पे क्या कमी थी, स्वमान की कमी थी। जब भी स्वमान की कमी होती है तो स्वमान और सम्मान में बैलेंस, सम्मान देने में बैलेंस नहीं होता है, तभी हम माया से हार खाते हैं। रियली कई बातों में विजय प्राप्त करनी होती है तो दोनों का बैलेंस चाहिए, सम्मान देने का बैलेंस और स्वमान में रहने का बैलेंस। चलो उसके लिए तो हम आगे और एग्जाम्पल देंगे, लेकिन दूसरी बात जो है कि कभी कभी हम सहयोग भी दे सकते हैं खुद की स्व परिवर्तन द्वारा। हम आए हैं क्यों ब्राह्मण जीवन में, हमारा स्व परिवर्तन, वो एनर्जी जो स्व परिवर्तन की होती है यज्ञ को चलाती है, औरों को प्रेरणा देती है स्वाहा होने में। हमारी स्व परिवर्तन की गति में थोड़ा सा भी ढीलापन आ गया तो हम प्रेरणा लायक नहीं बन सकते हैं, औरों को फिर प्रेरणा नहीं आएंगी कि मैं यज्ञ में कुछ स्वाहा करूं, क्योंकि एग्जाम्पल चाहते हैं ना। तो स्व परिवर्तन को तीव्र बनाना ये भी एक सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है, खुद को परिवर्तन करना है। ये स्व परिवर्तन बिल्कुल दो बातें ट्रांसफॉर्म होती है उसमें, एक होती है वृत्ति, खुद की वृत्ति जब परिवर्तन होती तो हम औरों की वृत्ति भी बदल सकते, दूसरा है वायुमंडल एटमॉस्फेयर। तो सारा टाइम जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो वो भावना रहती है कि हम एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, वायुमंडल बना रहे हैं, या ऐसे ही साधारण रूप से बस चलो ड्यूटी निभा दी, अभी आंख बंद करके चलो और क्या डिस्ट्रैक्शन एंटरटेनमेंट क्या मिलेगा हमको, वो फिर नशा नहीं रहता है। फिर सहयोग देना संबंध में, अपने अनुभवों सा खान जो भी प्राप्तियां मिली है बाबा से वो भी शेयर करना, वो भी एक सहयोग है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपस में चलो बाबा ने परिवार रचा है, क्यों, ये एक प्रैक्टिस फील्ड है जिसमें हम अपनी दिव्य गुणों का लेन देन कर सकते हैं, जो हमको बाबा से प्राप्ति मिली है उसका लेन देन कर सकते हैं, उसके आधार से हमारे संबंध में स्पिरिचुअलिटी आती है, फैमिलियरिटी नहीं रहती है। और ये जो परिवार की भाषणा आती है वो स्पिरिचुअलिटी से आती है, भाई बहन की भाषणा, ब्रदरहुड की दृष्टि। तो ये जागृत होती है जब भी हम जो भी बाप से प्राप्ति मिली है उसकी लेन देन में हम बिजी रहते हैं। मैंने दादी में बहुत देखा है, दादी कभी भी किसी के प्रति कंप्लेंट सुनने में तैयार नहीं थी। एक दफा क्या हुआ था, ऑक्सफोर्ड में शुरू में दादी जी का नियम था कि तुरंत मुरली क्लास के बाद वो वॉकिंग चले जाते थे, तो हम वॉकिंग लेके चले जाते थे आधा घंटा नाश्ते से पहले। उस समय थोड़ा चिटचैट होता था, थोड़ा साइलेंस में हम वॉकिंग करते थे। तो एक बारी क्या हुआ, हम थोड़ा पैदल किया रास्ते में, फिर वापसी आके समय दादी ने हमको पूछा, आप ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो मैंने बोला हाँ दादी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दादी एक व्यक्ति के साथ थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है, इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और जैसे मैंने ऐसे ऐसे शुरू किया, दादी रुक गई, मेरे तरफ देखा और मुझे इतनी आंख दिखाई, कहते तुम क्या चाहती हो कि दादी मान जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है? दादी आपकी बातें अभी सुनेंगी तो ये आपका संस्कार बन जाएगा कंप्लेंट करने का, इसलिए दादी आपको अभी रोक रही है, ये बंद करो, ये धंधा बंद करो। सीधा जवाब। अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। तो ये भी एक सहयोग है, चुप रहना भी एक सहयोग है, क्योंकि हमारा काम क्या है, सहयोग देना माना उद्धार करना। सहयोग का प्रूफ है कि संगठन में शक्ति और बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत सूक्ष्म धारणाएं चाहिए। फिर सहयोगी बनना माना हर्षित मुख रहना, नहीं? चेहरे से कितनी सेवा होती है। अब समझो आपका भी मूड ऑफ होगा, लेकिन किसी का हर्षित मुख देखेंगे तो भी लाइटनेस महसूस होगी, चलो कोई बैठा है, सब कुछ ठीक है। किसी का उदास चेहरा हर रोज देखेंगे, सीरियस मुंह हर रोज देखेंगे, तो आपका ही मूड खराब हो जाता है। ये भी संगठन को मजबूत करने के लिए चाहिए, कुछ भी हो जाए चेहरे पे नहीं आना चाहिए। इस बात में तो दादी हमको बहुत डांटती थी। मुझे एक स्टोरी याद आती है जिसमें दादी ने ही बताई थी, साकार बाबा की कहानी है। तो एक बहन थी जो किचन में थोड़ा इसका स्वभाव ऐसा था, जो संघर्ष में आती रहती थी, किसी का नुक्स निकालती थी, कंप्लेंट करती थी, तो सभी बहुत डिस्टर्ब होते थे के बिहेवियर द्वारा। तो दीदी ने उस समय बाबा के पास आए थे और बताया था कि ये बहन ऐसा ऐसा कर रही है। तो बाबा ने दीदी का चेहरा देखा कि वो ऐसी है, लेकिन आपका चेहरा क्यों बदल रहा है? भल वो जैसी है वैसी है, लेकिन आपका चेहरा क्यों बदल रहा है जब भी आप बात कर रहे हो? ये पहला करेक्शन। फिर बाबा ने बोला अच्छा उस बहन को बुला लो, कल सवेरे बुला लो बाबा के पास, वो आ जावे। तो सवेरे के समय वो पहुंच गई बाबा के कमरे में। तो बाबा ने उसको दृष्टि दिया और बोला, जो भी आपने भक्ति की है वो सब झूठ थी, झूठी थी। वो तो डिस्टर्ब हो गई कि बाबा ने, बाबा आप क्यों ऐसे मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि जो भक्ति मैंने की है वो झूठी थी। तो फिर बाबा ने बताया कि देखो भक्ति मार्ग में आप जड़ चित्रों, जड़ देवी की चित्रों को पूजा कर रहे थे, उसकी दृष्टि ले रहे थे। अभी वो जड़ चित्र आपके सामने चैतन्य रूप में बैठी है और अभी भी आप पहचानते नहीं हो, अभी भी नुक्स निकालते हो, तो कौन सी भक्ति की थी भक्ति मार्ग पे? हमारा सम्मान देना एक अनादि लॉ है। कि हम जितना सम्मान देंगे हम सारे चक्र में हमको सम्मान मिलेगा, और भक्ति मार्ग में भी हम वही भावना से हम पूजा करेंगे। और फिर जब हम देवी परिवार में आ जाएंगे, ब्राह्मण परिवार में आ जाएंगे, तो हमको दिखाई देगा हाँ वही है, वही मेरे भाई बहने हैं। तो हर्षित मुख रखना। दूसरा है गुणों का लेन देन। इसमें दादी जानकी नंबर वन लेती थी, कुछ भी होता था अपना गुणों का लेन देन, सभी को हल्का करना, सभी को लाइट करना। मुझे याद है हम जब रिसेप्शन पे बैठते थे तो दादी जी वहां कोने में बैठते थे सोफा पे, हर टाइम फोन पे, 3:30 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, फोन पे। किसी का कोई प्रॉब्लम था, धन का प्रॉब्लम था, दिवाला हो गया था उसके कंपनी में, बैंकरप्सी हो गया था, और मैं जब भी दादी को सुनती थी, मैं बैठी हूं ना, तुम काय को चिंता करते हो। इतना विश्वास से, इतना विश्वास दिलाती थी, लोगों में निश्चय भरती थी कि सभी को बिल्कुल हल्का कर लेती थी। तो ये एक गुणों का लेन देन है, बहुत जरूरी है। और जो गुण जिस समय पे आवश्यक है वो ही देना है। अभी के लॉकडाउन के समय कोई सेवाधारी नहीं है, लेबर्स नहीं है, तो उस समय तो हम प्रैक्टिकल कर्मणा सेवा द्वारा सहयोग चाहिए ना, तो कर सकते तो जितना कर सकते करो, ये तो आपके अकाउंट में ही जाएगा। फिर आता है किसी की उमंग उत्साह को बढ़ाना, ये भी एक सहयोग है। कभी कोई निराश हो जाता है, आप क्या करते हो उसको, बस और ही इसकी कहानी में प्रभावित आकर के खुद को ही निराश बना देते हो क्या? या किसी को उमंग उत्साह दिलाना एक बहुत बड़ी सहयोग है। और संगठित संगठन शक्ति को बढ़ाना, जब भी हम मीटिंग करते हैं आपस में, अलग अलग प्रकार की आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, सभी की पर्सपेक्टिव भी अलग अलग होती है, लेकिन कई ऐसी धारणाएं हमारे में होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए। और जहां पे मेजॉरिटी जाती है मैं वहां जा सकती हूं, क्योंकि थोड़े समय के लिए कभी कभी रजाई छोड़नी होती है। हम मीटिंग में बैठे हैं, 12 लोग हैं, इसमें से 8-10 लोग कहते हैं हमको इस रास्ते पे जाना है। आपको पता है इस रास्ते पे जाने से थोड़ा नुकसान आएगा, फिर भी वो आपका विचार मानने का तैयार नहीं है। उस समय आप क्या करेंगे? बस आपका ही ओपिनियन रट में बैठ करके रट ले आएंगे। उस समय प्रायोरिटी क्या है कि कुछ भी हो जाए संगठन की भावना तोड़नी नहीं है, तो मुझे अपना विचार त्याग करके भी हां जी बोलना है, क्योंकि रजाई छोड़नी है। और जब मैं रजाई छोड़ूंगी ना, अपने आप थोड़े समय के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, फिर वापसी आकर के आपको ही रजाई मिलेंगी, क्योंकि जो लॉ है, जो नेचुरल है, वो ही होगा ना, जो ड्रामा में है वही होगा। तो आपका विचार जो रियल है तो ड्रामा में ऐसे ही होगा, तो आपको चिंता करने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, ड्रामा के ऊपर छोड़ दो, अपने आप वो रजाई वापस आएंगे आपके हाथ में। तो ऐसी ऐसी जब सूक्ष्म धारणाएं हम रखते हैं और हम निमित्त बनते हैं गुप्त रीति से संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो आपकी आगे वाली राजधानी में भी, आपकी प्रजा में एक संगठित एक शक्ति होगी जिससे आपको सहयोग मिलेगा। ये पूरा खेल गुप्त है। अभी आती है बात स्वमान और सम्मान देने की। दोनों का बैलेंस चाहिए। आखिर मैं सोच रही थी, मैं आज बाबा के कमरे में जब गई थी तो मैं सोच रही थी आखिर मेरा स्वमान है क्या, है क्या मेरा स्वमान, क्या मेरे लाइफ में क्या डिग्री का स्वमान है क्या? अरे तो पाई पैसे की पढ़ाई है। अच्छा कितनी सेवा की है उसका स्वमान है क्या? स्वमान है क्या? मेरी अनादि आदि स्थिति की खुशबू, उसकी नशा मेरा स्वमान है। बाप की बढ़ाई, बाप की महिमा मेरा स्वमान है। देखो बाप शांति का सागर है, उसके आगे मास्टर लिख लो, वो मेरा स्वमान हो गया। जो भी बाप की महिमा है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, उसके आगे बस मास्टर शब्द लिख लो, वो मेरा स्वमान बन गया। तो बाबा जब अंत में आते हैं और हमको इतना प्यार से उठाते हैं, ना केवल बच्चे बच्चे कह करके, लेकिन रियल, अरे बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तो हम पहले पहले तो प्यार में तो भावना में आकर के तो हां बोलते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है क्योंकि चक्र का ज्ञान नहीं बैठा है। जब तक स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बने हैं तो स्वमान में नहीं टिक सकते हैं। आप थोड़ा सा अपनी स्मृति बेहद में लेके जाओ, आप देखो प्रैक्टिकल रूप में ये उदाहरण, मैं आत्मा, मैंने 84 बारी इस शरीर को धारण किया है, 84 बारी शरीर को धारण किया, 84 बारी शरीर देह का त्याग किया है, वो 84 जन्म में अनेक रोल, अनेक पार्ट, वैरायटी पार्ट बजाए हैं, हर एक जन्म में कितने सारे संबंध कनेक्शन रखे हैं। तो अब सोचो वो आत्मा 84 जन्म लेके, उसको हम क्या टाइटल देंगे, उस आत्मा को क्या टाइटल देंगे उसको, बताओ, ऐसी आत्माओं के क्या टाइटल देंगे? चक्रवर्ती राजा, हीरो एक्टर, अनुभव मूरत, क्या नहीं किया है? बस ये एक जन्म में, छोटी सी बातों में डर आता है, बस एक जन्म में 2 सेकंड के लिए किसने आपकी गिलानी की, ठीक है, अरे गोपी तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, अच्छा वो 2 सेकंड मैंने पकड़ लिया, वो 2 सेकंड 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे 24 घंटे में क्या है, 24 घंटे 1 साल में क्या है, 1 साल 1 जन्म में क्या है, अरे पाई पैसे का हम पकड़ के बैठे हैं, बस वो 2 शब्द पकड़ के बैठे हैं, खुद का स्वमान टॉयलेट में डाल दिया। तो चक्र फिराना माना मैं कौन हूं और मैं कैसी आत्मा हूं, वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि जो बाबा मुझे कह रहा है, जो बाबा मुझे मान दे करके मुझे अपने स्वमान के टाइटल्स बता रहे हैं, वो सही है, मैंने अपनाया है रियली दिल से, मैंने चक्र को, मेरा पूरा चक्र को सामने देख करके मैंने अपनी बुद्धि को कन्विंस किया है कि मैं ये हूं। क्योंकि थोड़ी सी भी महिमा में कमी होंगी ना तो वही रास्ता बनता है माया को वार करने के लिए, और वो जो गैप होता है उसमें ही मान की इच्छा शुरू होती है, और मान की इच्छा माना मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट दिया जाता है, और होता है सचमुच ही अंदर से फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है एक इमोशन जैसा पैदा होता है, क्योंकि इतने जन्मों से, 63 जन्मों से हम लिमिटेड मान के आधार से चले हैं ना, तो वो जब तक वो भूख पूरी नहीं हुई है कि मुझे वो स्टेटस का मान, मुझे कोई अपनी विशेषता का मान देवे या मेरा ज्ञान कितना अच्छा है, गुणों का मान देवे, तब तक मुझे अंदर से राहत नहीं मिलती है। लेकिन ये अभिमान बोल रहा है। मैंने खुद का अनुभव जो किया है कि जब भी मैं बाबा की महिमा करती हूं तो मुझे बहुत नेचुरल रीति से, सरल रीति से मुझे अपना स्वमान महसूस होता है। मैंने ये प्रयोग करके देखा है। और ये जो अहंकार का जो पुल होता है कि मुझे मान क्यों नहीं मिला, मुझे किसी ने क्यों पूछा नहीं, वो सॉफ्ट हो जाता है, वो इतना पुल नहीं रहता है। हमने एक बारी, हमारी दिसंबर मास में यूथ की चर्चा होती है, सारे निमित्त वाले विश्व में यूथ से आते हैं, 50 देशों से आते हैं, तो हर एक दादियों के पास लेके जाते हैं। तो एक बारी रतन मोहिनी दादी के पास लेके गए थे, तो उस समय किसी ने पूछा था कि दादी हम व्यर्थ संकल्पों, खुद की जो प्रतीक जो कमजोर संकल्प होते हैं उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने की युक्ति क्या है, और वेस्ट थॉट के ऊपर विजय प्राप्त करने की युक्ति क्या है। तो दादी जी ने बहुत अच्छा रुझान शुरू किया, हर एक को अपना अनुभव बोला कि बाप से प्यार लेना, ये करना ये करना। फिर दादी ने सभी को पूछा कि जो भी, हर एक ने जो भी विधि अपनाई है उससे सक्सेस मिली है? तो सभी ने तो ना बोला। थोड़े समय के लिए सक्सेस होता है लेकिन बाद में वो व्यर्थ शुरू हो जाता है। फिर दादी ने बहुत अच्छी विधि बताई कि जब भी थोड़ा सा भी व्यर्थ संकल्प शुरू होता है, चाहे खुद के प्रति चाहे औरों के प्रति, तो तुरंत बाप की महिमा को याद करो, बाबा कौन है, बाबा की टाइटल्स को याद करो, उसको मंथन करो, और उसकी गहराई में जाएंगे अपने आप व्यर्थ खत्म हो जाएगा फॉर गुड। युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहती हूं जो भी आत्मा को चाहिए, जो भी स्वमान चाहिए, वो बाप में है। और मैंने कई बारी देखा कि खुद को, खुद की स्व परिवर्तन में सहयोगी बनना, ये भी एक एटीट्यूड होता है खुद के प्रति। साक्षी होकर के खुद के लिए एक शुभ संकल्प की वृत्ति बनानी होती है, ये एक पुरुषार्थ होता है। हम क्या करते हैं, हम मन में कई विचारों को अलाउ करते हैं, और उस विचार जब हम अलाउ करते हैं तो हम खुद की वृत्ति को बदलते, बिगड़ती है खुद की वृत्ति, और वो जब वृत्ति बिगड़ती है तो स्व परिवर्तन की वो फीलिंग नहीं आती है। आती है फीलिंग जिद करने की, सिद्ध करने की, और जैसे अंदर कठोर दिल बन जाता है। तो जब भी दिल कठोर बन जाता है ना, तो समझो ये दुख ही दुख होता रहता है अंदर से, बार बार हमारी वृत्ति से ही हम दुख लेते हैं। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया कि बाबा मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है, साक्षी होकर के जब साथी के साथ बैठते हैं और दिल से बाबा के साथ वार्तालाप शुरू करते कि बाबा मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए, तो मैंने देखा उस साक्षीपन की स्थिति में बाबा जैसे वो कमजोरी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तुरंत वो एनर्जी बदलती है। जैसे कोई ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, आप पेन से लिखते हो, इंक से, फिर मिस्टेक होता है तो ब्लॉटिंग पेपर डालते हो इंक को निकालने के लिए, तो तो जब साथी का अनुभव होता है और हम साक्षी की सीट पे बैठे हैं तो बाबा का संग ऐसा काम करता है, वो फीलिंग ले लेता है और दिल को वापस सॉफ्ट बना देता है, नरम बना देता है। क्योंकि दिल कठोर होता है तो मन भी ऐसा होता है, मनोवृत्ति भी ऐसी होती है। दिल सॉफ्ट होता है, सरल होता है तो स्वभाव भी ऐसा होता है, और मन में हल्कापन होता है, इजीनेस भी होती है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जो भी अभी भी सूक्ष्म इच्छाएं हमारे अंदर है, हद का नाम शान, आज इतना अच्छा बाबा ने डिस्क्रिप्शन दिया, नहीं बेपरवाह बादशाह, जिसको नाम शान की कोई इच्छा ही नहीं है, इसको कहेंगे सच्ची फ्रीडम। हम खुद को बनाना है ना, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, खुद को मना करके बाबा के संग से खुद को ऐसा बनाना है। बाकी मुझे एक टॉपिक तो छेड़नी है इसमें, क्योंकि वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब कोई जब भी कोई हमको तिरस्कार करता है, हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। वैसे तो मुझे थोड़ा समय लगा सीखने में इस बात को, लेकिन मुझे ये बात मैंने अपने लिए अंडरलाइन की है कि मैं जब बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन रखूंगी संबंध में तो मेरा खुश रहने का चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेवा के फील्ड में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो बोलूं वो सुने मेरी बात, ये एक इच्छा होती है। अरे मैं बोलूं आप मानो तो सही ना, होता है ना। अभी वो ही आप छोड़ दो या आप समझ लो कि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, तो फिर वो मानेंगे तो आपको खुशी हो जाएगी उस समय। तो जब जीरो एक्सपेक्टेशन की पॉलिसी आप रखेंगे ना, तो आपका खुश रहने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातों में हम दुख लेते हैं, तो रिजेक्शन होगा ही, ये समझ लो। स्मॉल राइटिंग में देवता पद लेना है, संपूर्ण संपन्न अवस्था तक पहुंचना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो गिलानी खानी पड़ेगी। क्योंकि पता है हीरा कैसे बनता है, जब भी पृथ्वी का इतनी गर्माइश होती है, तापमान होता है, और तो पृथ्वी का जब इंटेंस दबाव होता है तब हीरा बनता है। ऐसे हीरा नहीं बनता है। और सच्चा सोना कैसे निकलता है, जब भी उसको आग में डाला जाता है, सच्चा सोना वो है आग में डालने से भी और ही उज्जवल होता है, वो सच्चा सोना होता है। जब सोने में कुछ खाद मिली हुई होती है उसको आग में डालते हैं तो वो कालापन निकलता है, लेकिन सच्चा सोना आग में डाल करके भी उज्जवल होता है। तो ये जो चाहे हमारे कर्म बंधन द्वारा प्रेशर, परिस्थितियों की गर्माइश से, संबंध संपर्क में कुछ खाना पड़ता है, ये सब कुछ बेनिफिशियल है, कल्याणकारी है हमको डायमंड बनाने के लिए। लेकिन हम उस समय अपने आप को डायमंड महसूस नहीं करते हैं, इमोशंस में आते हैं ना। लेकिन मुझे जब बाबा का ज्ञान में पढ़ती हूं और मुझे एक बात बाबा की मुरलियों से बहुत दिल में लगी हुई है, आज दिन तक मैं इसको बहुत याद करती हूं सेवा के फील्ड पे, कि बाबा ने बताया है कि देखो हर ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए निमित्त बनेगा कर्म बंधन चुक्त करने के लिए, तो डोंट वरी बी हैप्पी, आगे बढ़ो। आपके कर्म बंधन कैसे चुक्त होंगे, लौकिक द्वारा तो नहीं होगा, उनके पास ज्ञान नहीं है, योग की शक्ति नहीं है, तो कोई ना कोई एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, मुझे पता है मेरे साथ ऐसे हुआ था, जब हम पहले पहले सेंटर में आए थे तो एक बहन के साथ हम कमरा शेयर कर रहे थे, तो इस बहन की थोड़ी एक ऐसी चलन थी, रॉयल नहीं थी इतनी, तो मुझे डायरेक्शन देती थी आपको 5 बजे सवेरे कमरे से जाना है, मुझे स्नान अकेला करना है, मुझे तैयार अकेला होना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे। तो मेरी जो लौकिक परिवार में मेरी जो बड़ी बहन है उसके साथ भी मेरा संबंध इतना नहीं था, ठीक नहीं था, हमारा स्मूथ नहीं था रिलेशनशिप। और जब मैं सेंटर में आई तो ये इस बहन के साथ जो रहना हुआ तो वही सेम संस्कार उसके थे, एग्जैक्ट मेरी बड़ी बहन के समान, तो वही सेम फीलिंग्स अंदर से प्रकट हो रहे थे। फिर मैंने एक मास के बाद मैंने देखा, अरे ये तो सेम ही फीलिंग्स आ रहे हैं, मैं तो वो परिवार छोड़कर के यहाँ देवी परिवार में आ रही हूँ फिर भी वो फीलिंग्स आ रहे हैं। फिर मुझे, मैंने जब वो मुरली पढ़ी तभी मुझे पता चला, चलो ये आत्मा निमित्त बनी है मेरा कुछ संस्कार परिवर्तन कर्म बंधन चुप्त करने के लिए। तो मैंने अंदर जाकर के बहुत योग का अभ्यास शुरू किया, तपस्या शुरू किया कि इस फीलिंग को मुझे फिनिश करना है, उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, सम्मान में रहना है, शुभ भावना। एक मास से मैंने ये प्रयोग किया, वो संबंध ठीक हुआ। और जब वो संबंध ठीक हुआ 3 या 4 मास के बाद जब मैं घर चली गई तो मेरी बड़ी बहन के साथ इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन पहली बार ही मैंने किया बहुत सालों के बाद। तो मैंने देखा कि देखो हमारे ब्राह्मण जीवन में हमको इतना सहयोग मिल रहा है कर्म बंधन चुक्त करने के लिए, तो थैंक्स देना चाहिए ना कि इतना महान ब्राह्मण आत्मा मेरे लिए निमित्त बनी है। तो इसलिए डोंट वरी बी हैप्पी, छोटी बात को बड़ी नहीं करना है रियली। दूसरी एक मैं कहानी आपको सुनाती हूं। कई कई बातें होती है सेवा के फील्ड पे और हमारा ड्रामा अनुसार वही पार्ट था कि जहां पे देश में संघर्ष होता था या कुछ फैमिली में डिवीजन होती थी या कुछ सुधार कराना था तभी हमको वहां भेजा जाता था। तो एक देश में वहां की जो बहन थी उन्होंने पैसे में थोड़ा हेरी फेरी हुआ था, बहुत फैमिली में डिवीजन हुआ था, सेवा भी नहीं हो रही थी और यज्ञ में दिवाला हो रहा था, बैंकरप्सी हो रही थी, बैंक हमारे पीछे थी और कोर्ट केसेस भी शुरू हो गए थे, बहुत खराब हालत हो गई थी। तो दादी जी ने उनको एक पत्र भेजा था कि बहन अभी आप प्रेसिडेंट की सीट को छोड़ो और आप बस सीनियर सिस्टर के रूप में रहो और ज्ञान योग की सेवा करो, लेकिन इन बातों में झंझट में नहीं जाओ क्योंकि आपकी स्थिति खराब हो रही है और निर्णय करने की शक्ति भी कम हो रही है। बहुत प्यार से दादी ने उसको राय दिया। एक बारी दादी ने पत्र भेजा, जवाब नहीं मिला। दूसरी बारी दादी ने पत्र भेजा, फिर भी जवाब नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि मम्मा का दिन जून मास में आने वाला था तो एक वीक पहले दादी ने मुझे बोला आप जाओ, आप जाकर के उससे जवाब लेकर के वापस आओ। बहुत बातें थी उस देश में, वैसे तो मैं आती जाती थी लेकिन उस समय थोड़ा नाजुक बहुत था। तो मैंने मैसेज भेज दिया कि दादी मुझे भेज रही है, तो जवाब भी नहीं आया तो मुझे पता भी नहीं था कोई आएगा या नहीं आएगा एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। तो जो दूसरी पार्टी थी उससे तो कोई आया व्यक्ति, कोई भाई आया था मुझे रिसीव करने के लिए। तो जैसे मैं एक सेंटर था जो बहनों का स्थान था जहां वो बहन रहती थी, तो मैं वहां पहुंची तो जैसे मैंने दरवाजा खोला वो बहन मेरे सामने आई, तुरंत बोलती है आपने किसको निमंत्रण दिया, हमने तो निमंत्रण नहीं दिया आपको आने का, आप क्यों आए हो। तुरंत सीधा जवाब ऐसे। मैंने हाथ जोड़ा और मैंने तो डायरेक्शन प्रमाण फरमान प्रमाण में चल रही थी तो मुझे पर्सनल लेने की कोई दरकार नहीं थी इसमें। तो मैंने इमेजिन किया कि दादी पीछे मेरे पीछे खड़ी है, तो मैंने हाथ जोड़ करके बोला बहन मिठी बहन दादी ने मुझे भेजा है, देखो मम्मा के दिन के लिए दादी ने ये सारा सौगात लेकर के आई हूँ। तो ऐसे बोल करके मैं इसको बाईपास करके सेंटर में चली गई, पूछा नहीं, ऐसे ही बाईपास करके अंदर चली गई। अभी आप सोचो, कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करता है और आप वहां रहो, और वो भी ब्राह्मण आत्मा, कैसे वायुमंडल बनता है, बहुत भारीपन का वायु, बहुत डार्क हो जाता है। वो बहन ने मेरे साथ बोलना बंद कर दिया, वो क्लास में भी नहीं आती थी, और बाबा का कमरा इतना छोटा था, वो बाबा के कमरे में भी नहीं आती थी अमृत वेले करने के लिए। तो मैंने सोचा अभी ऐसे वातावरण में मैं क्या करूं, मैं मीटिंग भी नहीं कर सकती हूं, दादी को जवाब चाहिए कई बातों का, और ये बहन तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती है, और इतना है जैसे कालापन का वातावरण हो गया था। तो मैंने अंदर से बहुत डीप रीति से बाबा को बोला, बाबा मुझे इस बात में हार नहीं खाना है, मुझे आपका प्यार का विजय का प्रूफ देखना है इस सिचुएशन में। तो मैंने दो बातें शुरू की, एक तो मैंने घर की सफाई शुरू की और मैंने खाना पकाने का शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है इसको इंडियन खाना अच्छा लगता है, परोठा वरोठा। तो मैं सवेरे के समय जल्दी फटाफट खाना बनाती थी क्लास के बाद तुरंत, और रख देती थी, और शाम तक कुछ ना कुछ तो वो खा लेती थी, बातें तो नहीं करती थी लेकिन कुछ ना कुछ खा लेती थी। दूसरा, पूरा घर का वातावरण को चेंज करने के लिए मैंने सफाई शुरू की, क्लीनिंग ऐसे लगातार शुरू किया। दूसरी चीज शुरू की, सवेरे से 3 बजे अमृत वेले शुरू किया, और उस 3 बजे में मैंने इतना दृढ़ संकल्प किया कि बाबा मुझे इस व्यक्ति को शुभ भावना शुभ कामना से मारना ही है, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो पहले दिन पे तो दिल थोड़ा ऐसा छोटा हो गया था, लेकिन तपस्या करके करके 5वां दिन में मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ सुबह को 4 बजे अमृत वेले, जैसे एक फुआरा फाउंटेन, प्यार का फाउंटेन, व्हाट इतना ईश्वरीय स्नेह का वॉटरफॉल आ रहा था मेरे ऊपर बिल्कुल। और मैं दिल से थैंक्स दे रही थी उस बहन को कि थैंक यू, आपने मुझे रिजेक्ट किया इसलिए मुझे इतना पुरुषार्थ करने का मौका मिला और इतना बाबा का प्यार मिलने का मौका मिला, थैंक यू। इतना दिल से थैंक्स निकल रहा था उस समय। वही दिन में अमृत वेले के लिए बाबा के कमरे में 4 बजे आए, क्लास में आए, और उस शाम को हमने मीटिंग किया और जवाब दिया। आखिर उसकी चलन तो परिवर्तन हुई नहीं, लेकिन सहयोग तो दिया। तो मैंने देखा जब भी हम रिजेक्शन महसूस करते या रिजेक्शन के सामने आते, ये एक मौका मिलता है हमको, और ही प्यार का मूर्ति बनने का मौका मिलता है, बेहद की स्थिति बनाने का एक मौका मिलता है। अभी आप ये चैलेंज लेंगे या ऐसे ही कुर्सी में बैठ करके बोलेंगे, अरे इसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, देखो ना कैसे बोलता है मेरे साथ, देखो ना क्या बोलता है, बस। तो आप में और उसमें क्या फर्क, हीरा कब बनेंगे। मैंने कई बातों ऐसे रिजेक्शन के सामने मैंने बाप का प्यार का प्रूफ देखा है रियली। और मैं कहती हूं कि हमारा स्वमान इस सिचुएशन में, मैंने जब इस सिचुएशन को साक्षी होकर के देखा ना, तो मैंने अपने आप को पूछा कि मैंने इस व्यक्ति ने मुझे इतना रिजेक्ट किया, लेकिन मैंने दुख क्यों नहीं लिया उससे, क्योंकि मैं दादी के फरमान के आधार से आई थी। तो मेरी बात तो नहीं थी इसमें मिक्स, सूक्ष्म बात है ये थोड़ा। स्वमान में रहना है तो फरमान बरदार भी बनना है, क्योंकि हम जब डायरेक्शन पे चलते हैं, हमारा कुछ भी मिक्स नहीं होता है, तो हमारा स्वमान का टूटने का भी कम चांसेस है। इसलिए मैंने इस सिचुएशन में पर्सनल कुछ लिया नहीं, क्योंकि हम डायरेक्शन के अनुसार चल रहे थे। जो आप डायरेक्शन के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने मत से चलेंगे तो आपका स्वमान डेफिनेटली धोखा खाएगा, गारंटी। आप दुख लेंगे, किसी के संस्कार स्वभाव से दुख लेंगे। ये बहुत गहरी बात है। ये स्वमान में रहना माना फरमान को पालन करना ही है। ऐसे स्टोरीज तो मेरे पास बहुत है। हम शुरू शुरू में जब अफ्रीका से लंदन आए थे तो साउथ में हमारे माँ बाप ने ब्राइटन में घर लिया था। वहां सेंटर 5 मिनट की दूरी थी, तो सेंटर में भी सहयोगी थे, स्कूल कॉलेज में भी जाते थे, लेकिन वहां साउथ में कंजर्वेटिव बहुत है लोग, रेसिज्म बहुत होता है। उस समय हम तो चलो हम टीनेजर थे, छोटे उम्र वाले थे, हमको इतना पता नहीं था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रेसिज्म क्या होता है। हमारे पास उसकी परिभाषा भी नहीं थी, लैंग्वेज भी नहीं था ऐसा। तो हम पूरा कॉलेज में आई वॉज दी ओनली इंडियन, ओनली एशियन, और मेरी पढ़ाई, मैंने ऑलरेडी इनका सिलेबस कवर कर लिया था, मुझे एक साल पहले जल्दी मुझे यूनिवर्सिटी में जाना था, लेकिन इनके सिस्टम के अनुसार मैं रुक गई थी एक साल, और आई वॉज दी ओनली एशियन। और उसमें 3 ऐसे व्यक्ति थे जो मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते थे आप सोच भी नहीं सकते हो। बातें ऐसे करते थे, हमारे लॉकर में जो किताब होते थे वो निकाल के लेके जाते थे, हमको कभी कभी एक बारी क्लासरूम में भी लॉक कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्यों कर रहे हैं लोग। फिर बाद में पता चला इस स्कूल में बहुत हाई रेसिज्म है, तो मुझे लगता था कि ये मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। चलो ये समझने का इसमें छोड़ो, किसी का चलन समझ में क्या आपको मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सुबह के 6 बजे मैं 6 बजे और 6:30 बजे का योग इन 3 आत्माओं के लिए एलोकेट किया था मैंने। और 6 बजे का योग मैं बाबा को बोलती थी, बाबा इनको आज ऐसा प्यार की भावना दो कि इनकी दिन की शुरुआत अच्छी हो। बहुत प्यार की भावना दिल में पैदा करती थी, रियल रियल रूप से। और मैंने देखा 1.5 मास के बाद ये 3 व्यक्ति की वृत्ति मेरे प्रति इतनी बदली कि वो 3 में से 2 तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, अभी भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है। तो जब तक आपने ऐसा प्रयोग नहीं किया है, अपने शुभ भावना शुभ कामना का प्रयोग नहीं किया है, तो आप भगवान की मैजिक भी नहीं देख पाएंगे। हो सकता है हमारा काम है क्या, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाना। भगवान को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे जब हम किसी की वृत्ति बदलेंगे ना, हम खुद की वृत्ति बदल करके औरों की वृत्ति बदलने में निमित्त बनेंगे। ये सच्ची सेवा है और इस सेवा में बाप की प्रत्यक्षता होती है। अभी तो हम टाइम देख रहे हैं, घड़ी बहुत फास्ट स्पीड से चल रही है, बहुत सारी बातें भी मन में इमर्ज हो रही है, लेकिन अभी योग का समय भी शुरुआत हुआ है। लेकिन योग से पहले थोड़ा 5 मिनट प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। अभी आप में से कोई किसी का भी प्रश्न है? हाँ सुधीर भाई बोलिए।
ओम शांति। एक है, किसी ने हमें रिजेक्ट किया तो हमने अपने आप को संभाल लिया। कई बार हमें भी रिजेक्ट करना पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ बिजली में क्या होता है, पंखा है, रिपेयर करते करते बहुत टाइम हो गया है, चला रहे हैं खींच खींच करके, फिर देखते हैं इसको रिपेयर करना कोई मतलब नहीं है, नया लगा दो, इसको रिजेक्ट कर दो, स्क्रैप कर देते हैं। तो कई कई आत्माएं भी ऐसी होती हैं, ठीक है, उनको कितना ही स्नेह दो, कितना ही सम्मान दो, कितना ही सहयोग दो, ठीक है, आखिर कई लास्ट में अगर उनको भी रिजेक्ट करना पड़ता है। आपका व्यू
देखो, लौकिक स्कूल में कोई स्टूडेंट एक बारी नापास होगा, दूसरा बारी नापास होगी तो टीचर इसको निकालेगा, लेकिन बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं करता है तो हम भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें औरों की बात नहीं है, इसमें एक खुद की धारणा की बात है कि मेरी धारणा स्वमान में रहने और मान देने, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, न्यूट्रल गियर में डालना है, लेकिन एक रियलाइजेशन होना चाहिए ना कि मैं आखिर कौन हूं। मैं एक राजा पद पाने वाली आत्मा हूं तो मैं आपसे ऐसा ही व्यवहार करूंगी, भल आप कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करो, क्योंकि ये मेरा धर्म है और मेरा धारणा है, और मैं ये धर्म और धारणा को छोड़ने वाली नहीं हूं। आप कुछ भी करो, क्योंकि मेरी आगे वाली राजधानी पे ये असर आएगा। देखो, ये अलग बात है, किसी का स्वभाव संस्कार परखना, उसका नब्ज पकड़ना, उसके आधार से चलना, ये अलग बात है। इसमें क्या है कि जब भी किसी के ऐसे स्वभाव संस्कार होता है तो बाबा ने हमको परमिशन दिया है, किनारा कर लो अपने आप को, ये बाबा ने परमिशन दिया है। लेकिन किनारा का मतलब ऐसे नहीं कि दिल से अशुभ भावना रखो, वो अलग बात है, किनारा करना, लेकिन शुभ भावना से किनारा कर दो, अपनी सेफ्टी के लिए किनारा कर दो, ये बाबा ने डेफिनेटली डायरेक्शन दिया है। हाँ, ये सेफ्टी रहती है, सही बात है, नहीं ये सही बात है। इसको कहेंगे समझदार होकर के चलना। देखो, आपको पता है आग है, आग में क्या हाथ डालेंगे क्या? तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना भी, संग का ध्यान रखना भी एक समझ की बात है। लेकिन रिजेक्शन एक वृत्ति की बात होती है, स्थूल रूप की बात नहीं, एक वृत्ति की बात होती है। और जब मैंने किसी को भी यहां से अशुभ भावना से किसी को रिजेक्ट किया है ना, 10 बारी लोगों मुझे रिजेक्ट करेंगे, उसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट आता है। जैसे मैं एक बारी आपकी गिलानी करूंगी, 10 लोग खड़े होंगे मेरी 10 गिलानी करने के लिए। इसीलिए ये जो अंदर की जो कभी कभी दिल फेडअप हो जाती है, छोड़ दो इसको, करो इसको, इसको हमको परिवर्तन करना है, क्योंकि हम थक जाते हैं संबंध में। अरे आखिर कितना तक सहन करना है? माना ये संकल्प उठना, माना क्या, मैंने खुद को रियलाइज नहीं किया मैं कौन हूं, बाप की महिमा को रियलाइज नहीं किया कि मैंने कौन सी टाइटल को स्वीकार नहीं किया, मैं आखिर कौन हूं, मैं प्रजापद पढ़ने वाली हूं क्या? तो कभी कभी क्या होता है ब्राह्मण जीवन में कि हम पद का ख्याल नहीं करते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी अकाउंट होती है।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, मुख से कहते हैं कि मेरी फ्रिक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं करती है, ये मेरे लाइक माइंडेड सोल नहीं है, मैं इसके साथ नहीं चल सकती हूँ या नहीं चल सकता हूँ, तो ये फ्रिक्वेंसी मैच हो या ना हो, तो हमें उनके साथ बना के रखना है नहीं रखना है? मेरा इनके साथ जो मैं कहना चाहती हूँ या जो मेरा व्यवहार है या जो मेरी धारणाएं हैं उसके अनुसार ये व्यक्ति मेरे साथ फिट नहीं होता है।
देखो, संस्कार स्वभाव कभी मैच नहीं होगा, इम्पॉसिबल। एक दफा क्या हुआ था, बहुत बड़ा ये जो एशिया रिट्रीट सेंटर है ना, मलेशिया का प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमको 2-3 बारी मलेशिया जाना पड़ा। बहुत बड़ा टीम था, कितने साल, 4-5 साल लगे उस रिट्रीट सेंटर को उठाने में। तो वो टीम को यहां बुलाया गया था क्योंकि टीम में थोड़ा संघर्ष था। तो जो मुख्य भाई था उसने दादी को प्रश्न पूछा कि दादी ये मेरे साथ झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा, उसको कैसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो, आप कोई मनुष्य आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि उसके संस्कार स्वभाव बदलेंगे, लेकिन किस बात में आप विश्वास रखते हो कि कैसे बाबा इसको यूज करना चाहते हैं, बाबा इसमें जो विशेषता देखता है, बाबा इससे क्या काम कर चक्कर आ रहा है उसमें आप विश्वास रख सकते हो, लेकिन इसके संस्कार स्वभाव में नहीं रख सकते हो। अभी आई है ड्रामा की बात। हमारा संबंध संपर्क ड्रामा अनुसार हो रहा है। हम ड्रामा अनुसार चलेंगे तो हमको ज्यादा हमारी मैचिंग करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड, नेचुरल रिलेशनशिप माना जो ड्रामा अनुसार नेचुरल संबंध में आवे, नेचुरल हो। ऐसे नहीं कि मैं अपने मन में सोचूं मैं ज्यादा पुरुषार्थ का इस रिलेशनशिप में, मैं ज्यादा कुछ इसके साथ बोलूं, मैं ज्यादा इसके साथ कुछ सेवा करूं, ये अननेचुरल है। और हार्मनी का ये मतलब कि हमारी धारणा से एक डांस शुरू करो आप, भले वो डांस करे या ना करे, हम तो डांस कर सकते हैं ना। और फिजिक्स का एक लॉ होता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो थोड़े समय के बाद वही फ्रीक्वेंसी हवा में एक लहर बन जाएंगी। दादी हमको कायम कहती थी, सूक्ष्म में आप थोड़ा सा भी एक ऊंची पुरुषार्थ का लहर शुरू करो, एक लहर बन जाती है, चाहे आज नहीं कल बन जाएंगी। लेकिन मुझे अपना डांसिंग, अपनी धारणा को कोई व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मेरी धारणा है, मेरा स्वमान है। यू अंडरस्टैंड, क्या है कि जब बाप की कंपनी नहीं होती है ना, तभी ये शब्द निकलते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के साथ मैच नहीं करना। अरे इस व्यक्ति के साथ क्या लेन देन है, बाबा करण करावनहार है, बाबा सब सेवा करा रहा है, बाबा ने इस व्यक्ति को चूज किया, बाबा ने इसमें विशेषता भरा है। जो लेन देन है, जो बाप से दिया हुआ है, उसके साथ लेन देन है, मेरा इसके साथ डायरेक्ट लेन देन तो नहीं है। चलो हमको डायरेक्शन दिया गया है इसके साथ काम करना, तो हम नब्स पकड़ के, समझ करके, उसकी विशेषता देख करके चलेंगे, लेकिन हमारी धारणा को हम नहीं छोड़ेंगे। फोकस आता है स्व के ऊपर कि मैं ये क्यों कर रही हूं, मेरे पद के लिए कर रही हूं, मेरी आगे वाली राजधानी के लिए कर रही हूं, ना कि कोई व्यक्ति के लिए कर रही हूं। नाम मात्र आप मेरी बहन हो, नाम मात्र, लेकिन हमको ये चांस मिला है देवी गुणों का लेन देन करना। तो भल आप में थोड़ी देवी गुण का कमी है तो मैं भर लेती हूं, मैं अपने आप को, आप में धैर्यता की कमी है तो मैं और धैर्य बनती हूं, मुझे और चांस मिलता है धैर्य की शक्ति को यूज करने के लिए। इसमें क्या चाहिए, अपनी पर्सनल अकाउंट, पुरुषार्थ के अकाउंट में जमा बहुत चाहिए, फिर पुण्य कर्म कहते हैं। क्योंकि क्या है, हम हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार इतनी तेज नहीं है, हमारे अकाउंट में इतना जमा नहीं हुआ है, इसलिए हमारी धैर्यता की शक्ति इतना तक पहुंचती है। लेकिन इतनी पेशेंस की पावर ऑफ पेशेंस होना चाहिए जो हम औरों के लिए भी पेशेंस रख सकते हैं। मैंने दादी में ये बहुत देखा है। दादी में दो शक्तियां विशेष थी, एक थी धैर्यता की शक्ति, दूसरी थी एडजस्टमेंट पावर। कुछ भी होता था हम फट जल्दी 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 करते थे, वेट एंड सी। दादी खुद की एनर्जी, पेशेंस की एनर्जी से हमको पेशेंट बना देती थी। तो ये एक खुद की धारणा की बात है। और हम सूक्ष्म में क्या चाहते हैं कि हमको संबंध से कुछ एनर्जी मिले, हम इस सेवा के संबंध से कुछ प्राप्ति मिले। समझ में आई बात? इसलिए एक दोनों में मैच करने की बात ही नहीं है, ये होंगे असंभव है। ये बस आप एक धारणा, और धारणा में रहने के लिए एक लहर शुरू करो, वो अपने आप अपनी घड़ी पे उसको रियलाइजेशन आएगा। लेकिन आपको वेट तो नहीं करना है, किसी की परिवर्तन की घड़ी आने में वेट तो नहीं करना है ना, आपको तो अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, अपने जमा का खाता को और ही आगे बढ़ाना है। ये सूक्ष्म जो इच्छा होती है, मुझे संबंध चाहिए, चाहे सेवा में, चाहे कोई मेरे साथ एक लाइक होता है, वो है ना आपका संग। जब भी आप बाबा के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे ना, तो आपको लायक कंपनी मिलेंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। आप बाप का संग छोड़ेंगे और यहां से संग लेने, तो आप गड़बड़ हो जाएगा इस संग में, उसका प्रभाव आएगा, प्रभाव दबाव झुकाव में आ जाएंगे। लेकिन जितना बाप से सच्चा संग रखेंगे उसका आपको क्वालिटी संग मिलेगा आपको। तो मैच करना है आपकी फ्रीक्वेंसी को, तो बाप की एनर्जी से मैच करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेवा के साथ ही मिल जाएगा, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, कुछ मांगने की दरकार नहीं है। लेकिन उस मैचिंग में गड़बड़ है ना, तो यहां पे भी मैचिंग में गड़बड़ हो जाएगी, किसी के साथ सेट भी नहीं हो पाएंगे। ये बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या इतनी सारी बहनें नहीं मिली है?
ओम शांति। आपने फ्रीक्वेंसी मैच करने की बात कही ना, तो देखो हमने बाबा के साथ फ्रीक्वेंसी मैच की। हाँ। तो मैं तो फ्री हूँ और इतनी सारी बहनें भर्तियां हाँ। कराने के लिए
अच्छा,
मिल गई हैं।
एक्चुअली मैंने जब प्रोग्राम देखा ना, तो मैंने सोचा अरे इतनी सारी बहन कैसे मिली, ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी बहन को लगा दिया है भट्टी लगा।
ऐसे ही जब ग्रुप में नाम लिए जा रहे थे तो फोर्थ ग्रुप फुल हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे सेकंड फुल हुआ, फर्स्ट फुल हुआ, और इसमें सिर्फ 42 नाम थे, आज इस ग्रुप में सबसे ज्यादा नाम है। तो फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन है। पहले ग्रुप में 110 थे, दूसरे में 117, तीसरे में 128 नाम है।
देखो कितना अच्छा है। नहीं, इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लास्ट में पता है अभी 15 मिनट योग तो हम जरूर करेंगे। लंदन में एक बहन थी, उसका स्वभाव थोड़ा तेज वाला स्वभाव था, उसको जो करना था तो उसको 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 पहले करना था, प्रोजेक्ट में उसकी आइडिया पहली आनी चाहिए, काम में उसको पहला करना चाहिए, कुकिंग के समय भी मैं जो कहूं वो होना चाहिए। तो हमारी बहनों का टर्न होता है विदेश में, हम संभालते हैं ना बाबा का किचन को, हम स्टूडेंट को नहीं देते, हम बहनें खुद पकाते हैं, क्योंकि इसका फर्क बहुत होता है। तो मैंने फिर दीदी को बोला इस बहन को मेरे साथ रखो आप। तो मैंने उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, मैंने बोला इस बिचारी में सहयोग लेने का संस्कार नहीं है, इसलिए खुद का मैपन ज्यादा आता है, क्योंकि इसको सहयोग लेने का एक कला नहीं है। तो अभी मैं इसको कैसे सहयोग दूं? तो मैंने जयंती बहन को बोला इसको मेरे साथ कुकिंग में लगाओ। तो पहले दिन में जब ही वो आई तो मैं उसके साथ बैठी, मैंने बोला आपका क्या विचार है, आपको क्या बनाना है, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगी, आप बनाओ मेन्यू, आपको जो बनाना है मैं आपके सहयोगी बनूंगी। 1.5 साल ऐसे मैंने चलाया, मैंने अपना मत कुछ भी नहीं चलाया, कुछ भी, मैं कुछ मेन्यू में मैं कुछ माथा नहीं मारती। उसको बोली थी आप क्या चाहती हो, मैं आपको क्या सहयोग दूं। उसके बाद उसने एक छोटी बहन को लेकर के उसने खुद वो धारणा प्रैक्टिस की। तो मैंने देखा, देखो हम जब किसी को एक गुण का सहयोग देते हैं, आखिर टाइम तो लगता है लेकिन वो व्यक्ति सीखता है। और उसने वो बहन को आप समान बना करके किचन को सौंप दिया, उसमें इतना परिवर्तन आया। तो हमारा क्या जाता है सहयोग देने का? कुछ नहीं जाता है। अरे थोड़ा बहुत अभिमान का छुटकारा होना चाहिए, तो ये तो जाना ही है ना। तो इसीलिए नम्रचित होकर के निर्माण भावना होनी चाहिए, सहयोग दो, कुछ नहीं जाता है। ओके, ठीक है। अभी 10 मिनट ऐसे पावरफुल योग में बैठना है, बाबा का आह्वान करो। पहले पहले तो शरीर का सम्मान करना, इसको रिलैक्स कर दो, बिल्कुल देह शांत हो जाए। मन को भी रिलैक्स कर दो। और अपने मन के कमरे में जाकर के बैठ जाओ। इतना अच्छा मन का कमरा मिला है और उस कमरे में बाबा का आह्वान करो। बाबा को बुला लो। बाबा आओ, मेरे साथ बैठ जाओ। और जैसे हम बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा की हाजिरी से ही मन में शांति पैदा होती है। ये शांति का सागर मेरे घर में आ गया। और ये शांति का सागर अपनी शांति की किरणाएं फैला रहे हैं। और मैं अपने बाप के साथ में मैं छोटी सी बिंदु रूप बच्ची बन जाती हूं। कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा बाबा आ गया, मैं बाप के साथ बैठी हूं। और उस शांति के सागर में डुबकी लगाती हूं। और जैसे ही मैं डुबकी लगाती हूं, तो संकल्प आपे ही मर्ज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और मैं बिंदी स्वरूप आत्मा बिंदु रूप बाप के साथ शांति के सागर में समा गई। वही आत्मा हूं, परम धाम निवासी आत्मा। जो बाप की साइलेंस की गोदी में बैठी हूं, सारे संकल्प को मर्ज करके बाप की गोदी में बैठी हूं, एक बेफिक्र बादशाह।
रहते हैं तेरी या